आवाज के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। प्रेमचंद की कालजयी रचनाएं इस श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है नेकी। इसे स्वर दिया है लंदन से श्रीमती शन्नू अग्रवाल ने।
कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग, लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग में अपनी बात अपनी भाषा में।
सावन का महीना था, रेवती रानी ने पाँव में मेहंदी रचाई, मांग चोटी सवारी और तब अपनी बूढ़ी सास से जाकर बोली, अम्मा जी आज भी मेला देखने जाऊंगी। रेवती पंडित चिंतामणि की पत्नी थी। पंडित जी ने सरस्वती की पूजा में ज्यादा लाभ न देखकर लक्ष्मी देवी की पूजा करनी शुरू की थी। लेन देन का कारोबार करते थे, मगर और महाजनों के विपरीत खास खास हालतों के सिवा 25% से ज्यादा सूद लेना उचित ना समझते थे। रेवती की सास बच्चे को गोद में लिए खटोले पर बैठी थी। बहू की बात सुनकर बोली, भीग जाओगी तो बच्चे को जुखाम हो जाएगा। रेवती बोली, नहीं अम्मा, कुछ देर ना लगेगी, अभी चली आऊंगी। रेवती के दो बच्चे थे, एक लड़का दूसरी लड़की। लड़की अभी गोद में थी और लड़का हीरामन 7वें साल में था। रेवती ने उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, नजर लगने से बचाने के लिए माथे और गालों पर काजल के टीके लगा दिए, गुड़िया पीटने के लिए एक अच्छी रंगीन छड़ी दे दी और अपनी सहेलियों के संग मेला देखने चली। कीरत सागर के किनारे औरतों का बड़ा जमघट था। नीलगू घटाएं छाई हुई थी। औरतें 16 सिंगार किए सागर के खुले हुए हरे भरे सुंदर मैदान में सावन की रिमझिम वर्षा की बहार लूट रही थी। शाखों में झूले पड़े थे, कोई झूला झूलती, कोई मल्हार गाती, कोई सागर के किनारे बैठी लहरियों से खेलती। ठंडी ठंडी खुशगवार पानी की हल्की हल्की फुहार, पहाड़ियों की निखरी हुई हरियावल, लहरों के दिलकश झकोले मौसम को ऐसा बना रहे थे कि उसमें संयम टिक ना पाता था। आज गुड़ियों की विदाई है, गुड़िया अपनी अपनी ससुराल जाएंगी। कुंवारी लड़कियां हाथ पांव में मेहंदी रचाए, गुड़ियों को गहने कपड़े से सजाए उन्हें विदा करने आई हैं। उन्हें पानी में बहाती हैं और छक छक कर सावन के गीत गाती हैं। मगर सुखचैन के आंचल से निकलते ही इन लाड़ प्यार में पली हुई गुड़ियों पर चारों तरफ से छड़ियों और लकड़ियों की बौछार होने लगती है। रेवती ये सैर देख रही थी और हीरामन सागर की सीढ़ियों पर और लड़कियों के साथ गुड़िया पीटने में लगा हुआ था। सीढ़ियों पर काई लगी हुई थी, अचानक उसका पांव फिसला तो पानी में जा पड़ा। रेवती चीख मारकर दौड़ी और सर पीटने लगी। दम के दम में वहां मर्दों और औरतों का ठट लग गया, मगर ये किसी की इंसानियत तकाजा ना करती थी कि पानी में जाकर मुमकिन हो तो बच्चे की जान बचाए। संवारे हुए बाल ना बिखर जाएंगे, धुली हुई धोती ना भीग जाएगी, कितने ही मर्दों के दिलों में ये मर्दाना ख्याल आ रहे थे। 10 मिनट गुजर गए, मगर कोई आदमी हिम्मत करता नजर ना आया। गरीब रेवती पछाड़े खा रही थी। अचानक उधर से एक आदमी अपने घोड़े पर सवार चला जाता था। ये भीड़ देखकर उतर पड़ा और एक तमाशाई से पूछा, एक ऐसी भीड़ है? तमाशाई ने जवाब दिया, एक लड़का डूब गया है। मुसाफिर बोला, कहाँ? तमाशाई ने कहा, जहाँ वो औरत खड़ी रो रही है। मुसाफिर ने फौरन अपने काढ़े की मिर्जई उतारी और धोती कसकर पानी में कूद पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि ये आदमी कौन है। उसने पहला गोता लगाया, लड़के की टोपी मिली। दूसरा गोता लगाया तो उसकी छड़ी हाथ में लगी, और तीसरे गोते के बाद जब ऊपर आया तो लड़का उसकी गोद में था। तमाशाइयों ने जोर से वाह वाह का नारा बुलंद किया। माँ दौड़कर बच्चे से लिपट गई। इसी बीच पंडित चिंतामणि के और कई मित्र आ पहुंचे और लड़के को होश में लाने की फिक्र करने लगे। आध घंटे में लड़के ने आंखें खोल दी। लोगों की जान में जान आई। डॉक्टर साहब ने कहा, अगर लड़का 2 मिनट पानी में रहता तो बचना असंभव था, मगर जब लोग अपने गुमनाम भलाई करने वाले को ढूंढने लगे तो उसका कहीं पता ना था। चारों तरफ आदमी दौड़ाए, सारा मेला छान मारा, मगर वो नजर ना आया। 20 साल गुजर गए। पंडित चिंतामणि का कारोबार रोज ब रोज बढ़ता गया। इस बीच में उसकी माँ ने सातों यात्राएं की और मरी तो ठाकुर द्वारा तैयार हुआ। रेवती बहू से सास बनी, लेन देन वही खाता हीरा मणि के साथ में आया। हीरा मणि अब एक हृष्ट पुष्ट लंबा तगड़ा नौजवान था, बहुत अच्छे स्वभाव का, नेक। कभी कभी बाप से छिपाकर गरीब आसामियों को यूं ही कर्ज दे दिया करता। चिंतामणि ने कई बार इस अपराध के लिए बेटे को आंखें दिखाई थी और अलग कर देने की धमकी दी थी। हीरा मणि ने एक बार एक संस्कृत पाठशाला के लिए 50 रुपया चंदा दिया। पंडित जी उस पर ऐसे क्रुद्ध हुए कि 2 दिन तक खाना तक नहीं खाया। ऐसे अप्रिय प्रसंग आए दिन होते रहते थे। इन्हीं कारणों से हीरा मणि की तबीयत बाप से कुछ खिंची खिंची रहती थी, मगर उसकी यह सारी शरारतें हमेशा रेवती की साजिश से हुआ करती थी। जब कस्बे की गरीब विधवाएं या जमींदार के सताए हुए आसामियों की औरतें रेवती के पास आकर हीरा मणि को आंचल फैला फैला कर दुआएं देने लगती, तो उसे ऐसा मालूम होता कि मुझसे ज्यादा भगवान और मेरे बेटे से ज्यादा नेक आदमी दुनिया में कोई ना होगा। तब उसे बरवस वो दिन याद आ जाता जब हीरा मणि कीरत सागर में डूब गया था और उस आदमी की तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती जिसने उसके लाल को डूबने से बचाया था। उसके दिल की गहराई से दुआ निकलती और ऐसा जी चाहता कि उसे देख पाती तो उसके पांव पर गिर पड़ती। उसे अब पक्का विश्वास हो गया था कि वो मनुष्य ना था बल्कि कोई देवता था। वो अब उसी खटोले पर बैठी हुई जिस पर उसकी सास बैठती थी, अपने दोनों पोतों को खिलाया करती थी। आज हीरा मणि की 27वीं सालगिरह थी। रेवती के लिए ये दिन साल के दिनों में सबसे अधिक शुभ था। आज उसका दया का हाथ खूब उतारता दिखलाता था और यही एक अनुचित खर्च था जिसमें पंडित चिंतामणि भी शरीक हो जाते थे। आज के दिन वो बहुत खुश होती और बहुत रोती और आज अपने गुमनाम भलाई करने वाले के लिए उसके दिल से जो दुआएं निकलती वो दिल और दिमाग की अच्छे से अच्छी भावनाओं में रंगी होती थी। उसी दिन की बदौलत तो आज मुझे ये दिन और ये सुख देखना नसीब हुआ है, ऐसा सोचती थी वो। एक दिन हीरा मणि ने आकर रेवती से कहा, अम्मा श्रीपुर नीलाम पर चढ़ा हुआ है, कहो तो मैं भी दाम लगाऊं। रेवती बोली, 16 आना है? हीरा मणि, हाँ 16 आना। अच्छा गांव है, ना बड़ा ना छोटा, यहाँ से 10 कोस है, 20,000 तक बोली चढ़ चुकी है, 100-200 में खत्म हो जाएगी। रेवती बोली, अपने दादा से तो पूछो। हीरा मणि ने कहा, उनके साथ तो 2 घंटे तक माथा पच्ची करने की किसे फुर्सत है। हीरा मणि अब घर का मालिक हो गया था और चिंतामणि की एक न चलने पाती। वो गरीब अब ऐनक लगाए एक गद्दे पर बैठे अपना वक्त खांसने में खर्च करते थे। दूसरे दिन हीरा मणि के नाम पर श्रीपुर खत्म हो गया। महाजन से जमींदार हुए और अपने मुनीम और 2 चपरासियों को लेकर गांव की सैर करने चले। श्रीपुर वालों को खबर हुई, नए जमींदार का पहला आगमन था। घर घर नजराने देने की तैयारियां होने लगी। 5वें दिन शाम के वक्त हीरा मणि गांव में दाखिल हुए। दही और चावल का तिलक लगाया गया और 300 आसामी पहर रात तक हाथ बांधे हुए उनकी सेवा में खड़े रहे। सवेरे मुख्तारे आम ने आसामियों का परिचय कराना शुरू किया। जो आसामी जमींदार के सामने आता वो अपनी बिसात के मुताबिक 1 या 2 रुपए उनके पांव पर रख देता। दोपहर होते होते 500 रुपयों का ढेर लगा हुआ था। हीरा मणि को पहली बार जमींदारी का मजा मिला, पहली बार धन और बल का नशा महसूस हुआ। सब नशों से ज्यादा तेज ज्यादा घातक धन का नशा है। जब आसामियों की फहरिस्त खत्म हो गई तो मुख्तार से बोले, और कोई आसामी तो बाकी नहीं है? मुख्तार ने कहा, हाँ महाराज, अभी एक आसामी और है, तखत सिंह। हीरा मणि बोला, वो क्यों नहीं आया? तार ने कहा, जरा मस्त टाइप का है वो। हीरा मणि बोला, मैं उसकी मस्ती उतार दूंगा, जरा कोई उसे बुला लाए। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया और दंडवत करके जमीन पर बैठ गया। نہ نظر نہ نیاز، اس کی یہ گستاخی دیکھ کر ہیرا منی کو بخار چڑھایا، کڑک کر بولے، ابھی کسی زمیندار سے پالا نہیں پڑا ہے، ایک ایک کی ہیکڑی بلا دوں گا۔ تخت سنگھ نے ہیرا منی کی طرف غور سے دیکھ کر جواب دیا، میرے سامنے 20 زمیندار آئے اور چلے گئے، مگر کبھی کسی نے اس طرح گھڑکی نہیں دی۔ یہ کہہ کر اس نے لاٹھی اٹھائی اور اپنے گھر چلا آیا۔ بوڑھی ٹھکرائن نے پوچھا، دیکھا زمیندار کو کیسے آدمی ہیں؟ تخت سنگھ، اچھے آدمی ہیں، میں انہیں پہچان گیا۔ ٹھکرائن بولی، کیا تم سے پہلے کی ملاقات ہے؟ تخت سنگھ، ارے میری ان کی 20 برس کے جان پہچان ہے، گڑیوں کے میلے والی بات یاد ہے نا؟ اس دن سے تخت سنگھ پھر ہیرا منی کے پاس نہ آیا۔ 6 مہینے کے بعد ریوتی کو بھی شری پور دیکھنے کا شوق ہوا۔ وہ اور اس کی بہو اور بچے سب شری پور آئے، گاؤں کی سب عورتیں اس سے ملنے آئیں، ان میں بوڑھی ٹھکرائن بھی تھی۔ اس کی بات چیت، سلیقہ اور تمیز دیکھ کر ریوتی دنگ رہ گئی۔ جب وہ چلنے لگی تو ریوتی نے کہا، ٹھکرائن کبھی کبھی آیا کرنا، تم سے مل کر طبیعت بہت خوش ہوئی۔ اس طرح دونوں عورتوں میں دھیرے دھیرے میل ہو گیا۔ یہاں تو یہ کیفیت تھی، اور ہیرا منی اپنے مختار عام کے بہکاوے میں آ کر تخت سنگھ کو بے دخل کرنے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ جیٹھ کی پورن ماسی آئی، ہیرا منی کی سالگرہ کی تیاریاں ہونے لگی۔ ریوتی چلنی میں میدا چھان رہی تھی کہ بوڑھی ٹھکرائن آئی۔ ریوتی نے مسکرا کر کہا، ٹھکرائن ہمارے یہاں کل تمہارا نیوتا ہے۔ ٹھکرائن بولی، تمہارا نیوتا سر آنکھوں پر، کون سی برس گانٹھ ہے؟ ریوتی بولی، 29ویں۔ ٹھکرائن بولی، نارائن کرے ابھی ایسے ایسے 100 دن تمہیں اور دیکھنے نصیب ہوں۔ ریوتی نے کہا، ٹھکرائن تمہاری جوان مبارک ہو، بڑے بڑے جنتر منتر کیے ہیں، تب تم لوگوں کی دعا سے یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ یہ تو 7ویں ہی سال میں تھے، کس کی جان کے لالے پڑ گئے، گڑیوں کا میلہ دیکھنے گئی تھی، یہ پانی میں گر پڑے، بارے ایک مہاتما نے اس کی جان بچائی، ان کی جان تو انہی کی دی ہوئی ہے، بہت تلاش کروایا، ان کا پتا ہی نہ چلا۔ ہر برس گانٹھ پر ان کے نام سے 100 روپے نکال رکھتی ہوں، 2000 سے کچھ اوپر ہو گئے ہیں۔ بچے کی نیت ہے کہ ان کے نام سے شری پور میں ایک مندر بنوا دیں۔ سچ مانو ٹھکرائن، ایک بار ان کے درشن ہو جاتے تو جیون سفل ہو جاتا، جی کی ہوس نکال لیتے۔ ریوتی جب خاموش ہوئی تو ٹھکرائن کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دوسرے دن ایک طرف ہیرا من کی سالگرہ کا اتسو تھا اور دوسری طرف تخت سنگھ کے کھیت نیلام ہو رہے تھے۔ ٹھکرائن بولی، میں ریوتی رانی کے پاس جا کر دہائی مانگتی ہوں۔ تخت سنگھ نے جواب دیا، میرے جیتے جی نہیں۔ اساڑھ کا مہینہ آیا، میگھ راج نے اپنی پران دائی ادارتا دکھائی، شری پور کے کسان اپنے اپنے کھیت جوتنے چلے۔ تخت سنگھ کی لالسا بھری آنکھیں ان کے ساتھ ساتھ جاتی، یہاں تک کہ زمین انہیں اپنے دامن میں چھپا لیتی۔ تخت سنگھ کے پاس ایک گائے تھی، وہ اب دن کے دن اسے چرایا کرتا، اس کی زندگی کا اب یہی ایک سہارا تھا، اس کے اپلے اور دودھ بیچ کر گزر بسر کرتا، کبھی کبھی فاقے کرنے پڑ جاتے۔ یہ سب مصیبتیں اس نے جھیلی، مگر اپنی کنگالی کا رونا رونے کے لیے ایک دن بھی ہیرا منی کے پاس نہ گیا۔ ہیرا منی نے اسے نیچا دکھانا چاہا تھا، مگر خود اسے ہی نیچا دیکھنا پڑا، جیتنے پر بھی اسے ہار ہوئی، پرانے لوہے کو اپنے نیچ ہٹ کی آنچ سے نہ جھکا سکا۔ ایک دن ریوتی نے کہا، بیٹا تم نے غریب کو ستایا، اچھا نہ کیا۔ ہیرا منی نے تیز ہو کر جواب دیا، وہ غریب نہیں ہے، اس کا گھمنڈ میں توڑ دوں گا۔ دولت کے نشے میں متوالا زمیندار وہ چیز توڑنے کی فکر میں تھا جو کہیں تھی ہی نہیں، جیسے نا سمجھ بچہ اپنی پرچھائی سے لڑنے لگتا ہے۔ سال بھر تخت سنگھ نے جیوں تیوں کر کے کاٹا، پھر برسات آئی، اس کا گھر چھایا نہ گیا تھا، کئی دن تک موسلادھار میں برسا تو مکان کا ایک حصہ گر پڑا، گائے وہاں بندھی ہوئی تھی دب کر مر گئی، تخت سنگھ کو بھی سخت چوٹ آئی۔ اسی دن سے بخار آنا شروع ہوا، دوا دارو کون کرتا، روزی کا سہارا تھا وہ بھی ٹوٹا، جالیم بے درد مصیبت نے کچل ڈالا، سارا مکان پانی سے بھرا ہوا تھا، گھر میں اناج کا ایک دانا نہیں، وہ اندھیرے میں پڑا ہوا کرہا رہا تھا کہ ریوتی اس کے گھر گئی۔ تخت سنگھ نے آنکھیں کھولی اور پوچھا، کون ہے؟ ٹھکرائن نے کہا، ریوتی رانی ہے۔ تخت سنگھ نے کہا، میرے دھنیہ بھاگ، مجھ پر بڑی دیا کی، रेवती ने लज्जित होकर कहा, ठकुराइन ईश्वर जानता है मैं अपने बेटे से हैरान हूँ। तुम्हें जो तकलीफ हो मुझसे कहो, तुम्हारे ऊपर ऐसी आफत पड़ गई और हमसे खबर तक ना की। ये कहकर रेवती ने रुपयों की एक छोटी सी पोटली ठकुराइन के सामने रख दी। रुपयों की झनकार सुनकर तखत सिंह उठ बैठा और बोला, रानी हम इसके भूखे नहीं हैं, मरते दम गुनहगार ना करो। दूसरे दिन हीरा मणि भी अपने गुसाइयों को लिए उधर से जा निकला। गिरा हुआ मकान देखकर मुस्कुराया। उसके दिल ने कहा, आखिर मैंने उसका घमंड तोड़ दिया। मकान के अंदर जाकर बोला, ठाकुर अब क्या हाल है? ठाकुर ने धीरे से कहा, सब ईश्वर की दया है, आप कैसे भूल पड़े। हीरा मणि को दूसरी बार हार खानी पड़ी। उसकी ये आरजू कि तखत सिंह मेरे पांव को आंखों से चूमे अब भी पूरी न हुई। उसी रात को वो गरीब आजाद ईमानदार और बेगरज ठाकुर इस दुनिया से विदा हो गया। बूढ़ी ठकुराइन अब दुनिया में अकेली थी। कोई उसके गम का शरीक और उसके मरने पर आंसू बहाने वाला ना था। कंगाली ने गम की आंच और तेज कर दी थी। जरूरत की चीजें मौत के घाव को चाहे ना भर सके मगर मरहम का काम जरूर करती हैं। रोटी की चिंता बुरी बला है। ठकुराइन अब खेत और चरागाह से गोबर चुन लाती और उपले बनाकर बेचती। उसे लाठी देखते हुए खेतों को जाते और गोबर का टोकरा सिर पर रखकर बोझ में हांफते हुए आते देखना बहुत ही दर्दनाक था। यहाँ तक कि हीरा मणि को भी उस पर तरस आ गया। एक दिन उन्होंने आटा दाल चावल थालियों में रखकर उसके पास भेजा। रेवती खुद लेकर गई मगर बूढ़ी ठकुराइन आंखों में आंसू भर कर बोली, रेवती जब तक आंखों से सूझता है और हाथ पांव चलते हैं मुझे और मरने वाले को गुनाहगार ना करो। उस दिन से हीरा मणि को फिर उसके साथ अमली हमदर्दी दिखाने का साहस ना हुआ। एक दिन रेवती ने ठकुराइन से उपले मोल लिए। गांव में पैसे के 30 उपले बिकते थे। उसने चाहा कि इससे 20 ही उपले लूं। उस दिन से ठकुराइन ने उसके यहाँ उपले लाना बंद कर दिया। ऐसी देवियां दुनिया में कितनी हैं? क्या वो इतना ना जानती थी कि एक गुप्त रहस्य जवान पर लाकर मैं अपनी इन तकलीफों का खात्मा कर सकती हूँ मगर फिर वो एहसान का बदला ना हो जाएगा। मसल मशहूर है, नेके कर और दरिया में डाल। शायद उसके दिल में कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मैंने रेवती पर कोई एहसान किया है। ये बजादार आन पर मरने वाली औरत पति के मरने के बाद 3 साल तक जिंदा रही। ये जमाना उसने जिस तकलीफ से काटा उसे याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई कई दिन निराहार बीत जाते। कभी गोबर न मिलता, कभी कोई उपले चुरा ले जाता। ईश्वर की मर्जी, किसी का घर भरा हुआ है, खाने वाला नहीं तो कोई यूं ही रो रो कर जिंदगी काटता है। बुढ़िया ने यह सब दुख झेला मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हीरा मणि की 30वीं सालगिरह आई। ढोल की सुहानी आवाज सुनाई देने लगी। एक तरफ घी की पूरियां पक रही थी, दूसरी तरफ तेल की। घी की मोटे ब्राह्मणों के लिए, तेल की गरीब भूखे नीचों के लिए। अचानक एक औरत ने रेवती से आकर कहा, ठकुराइन जाने कैसी हुई जाती है, तुम्हें बुला रही है। रेवती ने दिल में कहा, आज तो खैरियत से काटना, कहीं बुढ़िया मर ना रही हो। ये सोचकर वो बुढ़िया के पास ना गई। हीरा मणि ने जब देखा अम्मा जाना नहीं चाहती तो खुद चला। ठकुराइन पर उसे कुछ दिनों से दया आने लगी थी। हीरा मणि ठकुराइन के मकान पर पहुंचा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बूढ़ी औरत का चेहरा पीला था और जान निकलने की हालत उस पर छाई हुई थी। हीरा मणि ने जोर से कहा, ठकुराइन मैं हूँ हीरा मणि। ठकुराइन ने आंखें खोली और इशारे से उसे अपना सिर नजदीक लाने को कहा। फिर रुक रुक कर बोली, मेरे सिरहाने पिटारी में ठाकुर की हड्डियां रखी हुई हैं, मेरे सुहाग का सिंदूर भी वही है, ये दोनों प्रयागराज भेज देना। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली। हीरा मणि ने पिटारी खोली तो दोनों चीजें हिफाजत के साथ रखी हुई थीं। एक पोटली में 10 रुपए भी रखे हुए मिले। ये शायद जाने वाले का सफर खर्च था। रात को ठकुराइन के कष्टों का हमेशा के लिए अंत हो गया। उसी रात को रेवती ने सपना देखा। सावन का मेला है, घटाएं छाई हुई हैं। मैं कीरत सागर के किनारे खड़ी हूँ। इतने में हीरा मणि पानी में फिसल पड़ा और मैं छाती पीट पीट कर रोने लगी। अचानक एक बूढ़ा आदमी पानी में कूदा और हीरा मणि को निकाल लाया। रेवती उसके पांव पर गिर पड़ी और बोली, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं श्रीपुर में रहता हूँ, मेरा नाम तखत सिंह है। श्रीपुर अब भी हीरा मणि के कब्जे में है, मगर अब रौनक दोबारा हो गई है। वहां जाओ तो दूर से शिवालय का सुनहरा कलश दिखाई देने लगता है, जिस जगह तखत सिंह का मकान था वहां ये शिवाला बना हुआ है। उसके सामने एक पक्का कुआं और पक्की धर्मशाला है। मुसाफिर यहाँ ठहरते हैं और तखत सिंह का गुण गाते हैं। ये शिवाला और धर्मशाला दोनों उसके नाम से मशहूर हैं। धन्यवाद।
कविता, कहानी, बाल रचना, गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।